वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से फिलिप्पियों नामक पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रभु ख्रीस्त मेरे स्वामी मन के, प्रभु ख्रीस्त मेरे स्वामी मन के, तुम प्रेम मिलन को आ जाओ, मैं भटका राही जीवन में, मैं भटका
खिला जा। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए अपने व्यक्तिगत जीवन में कुशल पूर्वक हैं और फिर से आज परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से फिलिपियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पौलुस ने हमें इस बात का स्मरण दिलाया है कि हम इस दुनिया में रहकर कैसे परमेश्वर के निकटता में अपने जीवन को ला सकते हैं। इतना ही नहीं, हम उसमें किस प्रकार से आनंदित रह सकते हैं। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, विशेष करके हमारे उन श्रोता भाई बहनों को जो अपने जीवन में निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, बीमारी अवस्था में हैं या नौकरी की तलाश में हैं, जीवन साथी की तलाश में हैं। पिताजी, उन पर अपनी अनुग्रह प्रदान करें। आज अपने वचन से हर एक से बोले और बातचीत करें, ताकि हर एक इस बात को समझ सके कि आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, इस समय हम में से हर एक को आपके हाथ में सौंप देते हैं। धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, पौलुस कहता है कि वह उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता है ताकि वह इनाम पाए जिसके लिए परमेश्वर ने उसे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। तो आइए अब हम आगे पढ़ेंगे और आज के अध्ययन में देखेंगे फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसका 15 पद। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। ध्यान दीजिए, हम में से जितने सिद्ध हैं, उसके कहने का अर्थ क्या है? मेरे विचार में मैं संतरे के पेड़ों से इसका उदाहरण देकर आपको समझा पाऊंगा। यदि संतरे अपने समय पर भी हरे रहें तो वे सिद्ध संतरे नहीं हैं। अतः सिद्ध शब्द से पौलुस का अभिप्राय है उस स्थान पर पहुंचना जहां विश्वासी पूरी तरह परिपक्व हो। दूसरा उदाहरण एक शिशु का होगा। एक 17 महीने का बच्चा अति प्रिय बच्चा है, परंतु यदि वह 17 वर्ष भी कहे पापा पा पापा, तो उसके साथ गंभीर समस्या है। पौलुस के मन में जो विचार है वह परिपक्वता का विचार है। वह कहता है, हम में से जितने मसीह में परिपूर्ण हैं, मसीह में उचित विकास कर रहे हैं। यही विचार रखें, अर्थात पौलुस का सा स्वभाव रखें। पौलुस के साथ दौड़ में सहभागी होकर लक्ष्य की ओर दौड़ें। बिना लक्ष्य के आप ना दौड़ें, जैसा कि आज हम में से कई लोग बिना लक्ष्य के अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, और इसका परिणाम हम जानते हैं कि हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। आपके मन में शायद कोई और विचार हो और शायद परमेश्वर आपसे कुछ और करवाना चाहता हो और आप करने को तैयार हैं, तो वह आप पर प्रकट कर देगा। परमेश्वर इच्छा रखने वाले विश्वासी की अगुवाई करेगा। मेरे प्रियो, आपको स्मरण होगा कि भजन का रचने वाला कहता है, अगुवाई के लिए मुंह न खोलें। यदि परमेश्वर आपको उस मार्ग पर लेकर चलेगा तो आपको कष्ट मिलेंगे। आप उसकी आंखों द्वारा अपने मार्ग पर चलाए जाना क्यों नहीं चाहते? परमेश्वर ऐसा ही चाहता है, यही पौलुस कह रहा है। परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। जी हाँ, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी अगुवाई करे तो वह अपनी इच्छा आप पर प्रकट कर देगा। पौलुस यही कहता है, मैं विश्वासियों से सुनता हूं, यदि मैं परमेश्वर की इच्छा जान पाता। यह प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में रहने का विषय है, उसके निकट आने का विषय है। परमेश्वर अपनी इच्छा प्रकट करे तो उसे पूरी करने की इच्छा भी होना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा खोजने का कोई छोटा रास्ता नहीं है। आप निश्चिंत जीवन जीकर दर्शन पाने या स्वर्गदूत के आने का या हरी बत्ती दिखने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते कि संकट में मार्ग दिखाई दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा जानना उसके साथ दैनिक जीवन की संगति और उसकी अगुवाई में रहने की मनोकामना से संभव होता है। यह आपको जीवन में उचित मार्ग पर रखेगा और आपके मन को महान आनंद प्रदान करेगा। यदि आप उसकी निकटता में रहेंगे तो उसकी इच्छाओं को भी आप जानेंगे। यदि आप उसकी निकटता में नहीं रहेंगे तो निश्चय ही आप उसकी इच्छाओं को अपने जीवन में नहीं समझ पाएंगे। इसी बात को पौलुस हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। फिलिपियों के पत्री 3 अध्याय उसके 16 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चलें। पौलुस फिलिपी के विश्वासियों को प्रोत्साहित करता है कि दौड़ में दौड़ें। वह चाहता है कि वे पुरस्कार के लिए परिश्रम करें, मसीह यीशु में परमेश्वर की ऊंची बुलाहट को समझें। मेरे प्रियो, अब वह स्वयं को या स्वयं का एक उदाहरण देता है, जिसे हम फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसके 17 पद में पढ़ते हैं, हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। यहां पर फिर से ध्यान दीजिए कि काश मैं यह कह पाता, परंतु नहीं, मैं इस योग्य नहीं। यह तो पौलुस ही कह सकता था, यदि तुम जानना चाहते हो कि कैसे करें तो मुझे ध्यान से देखो। यह नकल द्वारा संभव नहीं है। उसके कहने का अर्थ है कि आप मसीह का सामर्थ मसीह की देह कलीसिया से पाते हैं, और मेरे विचार में विश्वासी के लिए उचित है कि वह एक मसीही संस्थान कलीसिया की सीमा में रहकर काम करे। कलीसिया से मेरा तात्पर्य भव्य इमारत या बड़ी इमारत से नहीं है। अधिकांश लोगों का सोचना है कि उन्हें एक विशेष प्रकार के आराधना भवन में ही जाना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है। आप एक मसीही संस्थान की सीमा में कार्य कर सकते हैं। मेरे विचार में यदि आपके समुदाय में अच्छी बाइबल आधारित कलीसिया है जहां परमेश्वर के वचन की शिक्षा दी जाती है, और आप उसके साथ अपनी पहचान नहीं बनाते तो आप परमेश्वर की इच्छा से बाहर हैं। यदि आपके नगर में एक अच्छी मसीही संस्था है जिसके माध्यम से परमेश्वर कार्य कर रहा है तो आपको उसका सहयोग देना है, अन्यथा आप परमेश्वर की इच्छा के बाहर हैं। पौलुस के कहने का अर्थ यही है। अब पौलुस नकारात्मक पक्ष का उल्लेख करता है। आइए हम पढ़ते हैं फिलिपियों के पत्री 3:18-19 में लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत से ऐसे चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। मेरे प्रियो, आप देखेंगे कि यह नामधारी विश्वासियों की निंदा है। वे विश्वासी होने का दावा तो करते हैं परंतु जीवन से उसका विरोध करते हैं। उनका ईश्वर उनका पेट है, यह एक भयानक बात है। यहां पेट से अर्थ है लालसा। कुछ विश्वासियों में धन की लालसा होती है, वे पैसे के लिए कुछ भी करेंगे। कुछ में योनाचार की लालसा है, वह उनका ईश्वर बन जाता है। कुछ में लालसा होती है जो विरोध और झूठी बड़ाई का मूल है। इसका मुख्य कारण है कि वे सांसारिक वस्तुओं पर मन लगाते हैं। वे केवल स्वार्थ के लिए जीवित रहते हैं और उसी में अपना मान सम्मान देखते हैं। वे लज्जित होने की अपेक्षा घमंड करते हैं। पौलुस के कहने का अर्थ है कि यदि आपने प्रभु यीशु में विश्वास किया है, यदि आप में वह क्रांतिकारी परिवर्तन आया है जो दमिश्क के मार्ग पर उसमें अर्थात पौलुस में आया था, यदि प्रभु यीशु आपके मन मस्तिष्क में आपके समय आपकी प्रतिभा आपकी संपत्ता का सर्वश्रेष्ठ है तो आपके जीवन से इसका प्रकाशन अवश्य होगा। याकूब इसे अपने पत्री 2:17-18 में इस प्रकार से व्यक्त करता है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है, तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। दूसरे शब्दों में, यदि आपके कर्म ऐसे नहीं तो आपका पड़ोसी विश्वास नहीं करेगा। वह तो आपके विश्वास को आपके कर्मों से ही समझेगा अर्थात जानेगा। जॉन कैल्विन कहते हैं, विश्वास अकेला ही उद्धार दिलाता है, परंतु उद्धार दिलाने वाला विश्वास अकेला नहीं है। कुछ लोगों का कहना है उनका ईश्वर पेट है। यह बात जो है अशिष्ट सा लगता है, परंतु यह कथन उतना अशिष्ट नहीं है जितना कि वह दशा जिसका वह वर्णन करता है। विश्वासियों को पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए देखना कैसी दुख की बात है, नाशवान वस्तुओं पर मन लगाना। हम में से अधिकतर लोग इसी प्रकार की नाशवान वस्तुओं पर मन लगाए बैठे हैं, न कि परमेश्वर पर। पौलुस अपनी भावी आशा में परिवर्तन लाता है। फिलिपियों की पत्री 3:20 में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोह रहे हैं। स्वदेश अर्थात हमारी नागरिकता जो स्वर्ग की है, संपूर्ण जीवन शैली, एक संपूर्ण नया जीवन। फिलिपी एक रोमी नगर था जहां रोम का कानून चलता था। वहां के नागरिक वही पोशाक पहनते थे जो रोम नगर में पहनी जाती थी। उनकी भाषा भी रोमी भाषा ही थी। वहां का संपूर्ण जीवन आचरण रोम के सदृश ही था। इसी प्रकार विश्वासियों की अर्थात कलीसिया का जीवन आचरण स्वर्ग के जैसा होना है। उनकी भाषा भी स्वर्ग की भाषा होना चाहिए, यह हमारा लक्ष्य होना है। परंतु दुर्भाग्य से ऐसा होता नहीं है। पौलुस का कहना है कि हम इस पृथ्वी पर मसीह के राजदूत हैं, हमें इस पृथ्वी पर स्वर्ग और स्वर्ग के संदेश के वाहक होना है। क्यों? क्योंकि हमारी नागरिकता इस पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्ग की है। हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोह रहे हैं। पौलुस परमेश्वर की स्तुति की ऊंची कोटि की आशा व्यक्त करता है, यह उसके लौट आने की आनंद से भरी आशा है। मेरे प्रियो, नए नियम में विश्वासियों की आशा महाक्लेश के युग से संबंधित नहीं है। वह कहता है कि हमारी नागरिकता स्वर्ग की है, और फिर वह कहता है कि हम वहां से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह महाक्लेश के बारे में कुछ नहीं कहता है। महाक्लेश न्याय एवं दंड का समय होगा और कलीसिया उससे मुक्त कर ली जाएगी, अर्थात उससे मुक्त करा ली गई है। विश्वासी हानोक की नाई जो जल प्रलय से बचा लिया गया था, महाक्लेश से बचा लिए जाएंगे। अनेक लोगों का कहना है कि प्रभु कलीसिया को महाक्लेश में से सुरक्षित रखेगा। इसमें कोई शक नहीं कि परमेश्वर कलीसिया को महाक्लेश से सुरक्षित रख सकता है। उसने नूह को भी तो जल प्रलय में सुरक्षित रखा था, परंतु उसने हानोक को उठा लिया था। महाक्लेश में दो मानवीय समूह परमेश्वर के अपने होंगे, एक उठा लिया जाएगा, जैसा वह फिलाडेल्फिया की कलीसिया को कहता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय उसके 10 पद में, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए संसार पर आने वाला है। दूसरा समूह महाक्लेश में रहेगा, उनमें अन्य जातियां होंगी और 144,000 इसराइली होंगे। ये 144,000 इसराइलियों पर परमेश्वर मुहर लगाएगा। वे जो यह कहते हैं कि कलीसिया महाक्लेश में होगी, जो मैं नहीं मानता, यह वाद प्रस्तुत करते हैं कि बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि कलीसिया महाक्लेश में नहीं होगी। यह सच है कि बाइबल स्पष्ट शब्दों में ऐसा नहीं कहती है, न ही बाइबल स्पष्ट कहती है कि विश्वासियों को अन्य कार्य नहीं करने हैं। उदाहरण के लिए, मुझे पूरा विश्वास है कि हमें प्रत्येक जन को अपना अपना पद प्राप्त होगा, अर्थात अनंत जीवन में हमें अपना अपना काम करने को दिया जाएगा। परंतु धर्मशास्त्र इसे स्पष्ट नहीं करता है। परंतु धर्मशास्त्र स्पष्ट कहता है कि कलीसिया के लिए एक अद्भुत महिमामय भावी आशा है। हम में से अधिकांश को ऐसा प्रतीत होता है कि आज में और कलीसिया के उठाए जाने में बहुत ही कम अंतर है। धर्मशास्त्र में नहीं लिखा है कि प्रभु यीशु कब आएगा। पौलुस सोचता था कि प्रभु यीशु उसी के युग में आ जाएगा और पौलुस का महाक्लेश में होने का कोई संकेत नहीं है। यद्यपि उसके जीवन में कष्टों की कमी नहीं थी, परंतु उसने उन्हें महाक्लेश नहीं कहा था। पौलुस बड़ी आशा से कहता है, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हमारा एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोह रहे हैं। तो क्या यह महाक्लेश के बाद होगा? मेरी बाइबल में तो ऐसा नहीं लिखा है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि कलीसिया महाक्लेश में होगी। पौलुस की आनंदमय आशा से स्पष्ट है कि वह मसीह की बाट जोह रहा है, महाक्लेश की नहीं। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर कई बार मुझे और आपको इस बात से स्पष्ट कराना चाहता है अपने भक्तों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, कि वह चाहता है कि हर एक विश्वासी उस पर आशा रखे। क्योंकि हर एक जन उस देश में प्रवेश करेगा जिसके लिए परमेश्वर ने वायदा किया है। आज पौलुस भी मुझे और आपको इस बात का स्मरण दिलाता है कि हम उस आनंदमय आशा से भरे रहें। मेरे प्रियो, मैं आपके जीवन को नहीं जानता कि आपके अंदर इस प्रकार की आशा है या नहीं। यदि नहीं तो आज हम अपने जीवन में इस बात को जांच करके देखें, अपने जीवन को टटोल करके देखें और कहें और इस बात को स्वीकार करें कि एक हमारा देश है जो स्वर्गीय देश है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और आज के इस वचन के प्रकाशन में अपने आप को जांचते हुए उस स्थान के लिए तैयार करें ताकि हम उन आशीषों को देखने पाए, ना कि महाक्लेश को। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए, जिसके द्वारा से प्रभु आपने हमें इस बात का स्मरण दिलाया है कि आप हम सब मानव जाति से प्रेम करते हैं और आप चाहते हैं कि हम में से प्रत्येक आप पर विश्वास पाने के द्वारा से, विश्वास करने के द्वारा से स्वर्ग में प्रवेश करें, उस आनंद को प्राप्त करें जिसे आपने हम सब के लिए ठहराया है। और आज पौलुस ने हमें इस बात का स्मरण दिलाया है कि हम उस स्वर्ग के राजकुमार हैं, राजकुमारियां हैं, ताकि हम वहां पर रहकर आपके साथ संगति कर सकें। पिता परमेश्वर, हम में से प्रत्येक भाई बहनों को आपकी निकटता में लाते हैं। आप हम सब की सहायता करें ताकि हम आपके राज्य के अनुसार अपना जीवन जी सकें, इस पृथ्वी पर रहते हुए भी आपको आदर दे सकें। धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
जीवन के पथ